झलक आदित्य को साथ देखकर सिद्धार्थ मन में बोला था, मैं अब समझ चुका हूँ कि झलक ये सब सिर्फ मुझे जलाने के लिए कर रही है, ताकि मैं किसी ना किसी तरह रिएक्ट करूँ। झलक, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझसे कोई रिएक्शन नहीं ले पाओगी, सिद्धार्थ ने मन में सोचा और खुद को संभालते हुए बोला। तो तुम इस इंसान के साथ इसलिए हंस रही हो ताकि मुझे जला सको, मुझे चिढ़ा सको और मैं जलन में आकर कोई ना कोई हरकत करूं? लेकिन तुम्हारा ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, तुम कभी भी सिद्धार्थ खुराना के आसपास तक नहीं पहुंच पाओगी, समझी तुम? उसकी बात सुनकर झलक ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी आदित्य ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर खुराना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भले ही आप इस क्लब के मालिक हों, लेकिन आज के लिए हमने ये पूरा एरिया बुक किया हुआ है। यहाँ किसी भी तरह का हंगामा करना नियमों के खिलाफ है। आदित्य की बात सुनकर सिद्धार्थ ने एक नज़र झलक पर डाली और अगले ही पल वो आदित्य के सामने जाकर खड़ा हो गया और टॉन्ट करते हुए बोला, मिस्टर राणा, मैं तो सोचता था कि आप कोई समझदार और सफल बिजनेसमैन होंगे, लेकिन एक मामूली सी लड़की आपको पूरी तरह घुमा रही है और आप उसके इशारों पर नाच भी रहे हैं, रियली इम्प्रेसिव। ये बोलते हुए सिद्धार्थ ने तंज भरी मुस्कान के साथ झलक की ओर देखा। तभी अनामिका ने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, मिस्टर खुराना, मुझे लगता है कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। हम जानते हैं कि आप इस क्लब के मालिक हैं, लेकिन ये जगह आज हमने बुक की है और नियम साफ कहते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर हमारी पार्टी खराब नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मेरा पार्टी करने का पूरा मूड है और मैं आप लोगों की वजह से उसे खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए बेहतर होगा कि आप अभी यहीं से चले जाएं। अनामिका की बात सुनकर रणविजय का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो तेजी से उसके पास पहुंचा और अचानक उसके गालों को अपनी उंगलियों से दबाते हुए बोला, तो तुम्हें लगता है कि इस तरह का घटिया नाटक करके तुम सब कुछ हासिल कर लोगी? मैं नहीं जानता कि ये मल्होत्रा परिवार वाला ड्रामा कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कोई अमीर लड़की नहीं हो, तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो। तुम भूल रही हो कि तुमने अपनी जिंदगी के कई साल मेरे साथ बिताए हैं, हम साथ पढ़े हैं, मेरे कहने पर ही तुम यहाँ आई थीं। तुम्हारे पास तो होटल का बिल भरने तक के पैसे नहीं थे, मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हारी मदद की और तुम्हें सिंघानिया हाउस में रहने की जगह भी दी, और आज तुम खुद को अमीर साबित करने की कोशिश कर रही हो। मानना पड़ेगा, झलक के साथ रहकर तुम भी बिल्कुल उसकी जैसी हो गई हो, रणविजय व्यंग्य से हंसा और आगे बोला, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम्हारी वो डायरी मैं पढ़ चुका हूँ, उसमें लिखी हर फीलिंग मेरे सामने है। डायरी का जिक्र सुनते ही अनामिका का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। तभी रणविजय मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ, बुरा लग रहा है या फिर इस बात का डर है कि मैं तुम्हारा सच सबको बता दूं? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे किस हद तक चाहती हो, शायद इसी वजह से तुमने ये सारा ड्रामा रचा, क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला जाऊंगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि झलक आगे बढ़ी और बिना एक पल गवाए उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक, पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। झलक ने उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा, शट अप एंड शट योर माउथ, मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी और बोला तो अच्छा नहीं होगा। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने उसकी डायरी पढ़ ली तो अब उसे ब्लैकमेल करोगे, उसे मानसिक रूप से परेशान करोगे? जो करना है कर लो, मैं तुम्हें खुली चुनौती देती हूँ, अपनी पूरी ताकत लगा लो, मैं भी देखती हूँ कि तुम हमारा क्या बिगाड़ लेते हो। झलक का ये रूप देखकर आकांक्षा के चेहरे का रंग उड़ गया, सिद्धार्थ भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। झलक शुरू से ही निडर और दबंग थी, लेकिन आज उसके भीतर कुछ अलग ही आत्मविश्वास और शक्ति दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई बड़ा बदलाव आ चुका हो, कुछ ऐसा था जो सिद्धार्थ को लगातार सोचने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन फिलहाल उसने अपने विचारों को झटका। तभी सिद्धार्थ ने कोल्ड वॉइस में कहा, रणविजय, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये नाजायज लड़की सोचती है कि हमारे सामने ऊंची ऊंची बातें करके हमें झुका लेगी, हमसे सहानुभूति हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमें इसकी किसी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है इसका ये अमीर अमीर खेलने का ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और इतना कहकर वो आगे बढ़ा और झलक की ओर पॉइंट करके बोला, मैं इस लड़की को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसे फालतू में किसी भी तरह का कोई भाव देने की जरूरत नहीं है। ये कहकर सिद्धार्थ की नजरें आकांक्षा पर टिक गई थी। वहीं सिद्धार्थ की बात सुनकर रणविजय फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि आज से पहले सिद्धार्थ हमेशा किसी न किसी बात को लेकर उसे ताने सुनाता आया था, लेकिन आज पहली बार सिद्धार्थ ने सबके सामने उसका पक्ष लिया था, उसकी तरफ से बोला था जो उसे अच्छा लगा। वहीं आकांक्षा ने भी सिद्धार्थ की हाँ में हाँ मिलाते हुए झलक को देखकर बोला था, शर्म आनी चाहिए तुम्हें झलक, जिस परिवार ने तुम्हें रहने के लिए जगह दी, मान सम्मान दिया, तुमने उसी परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा, सबके सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसकी बात सुनकर झलक के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बस शांत खड़ी रही। और झलक को शांत देखकर आकांक्षा और चिढ़ गई और गुर्राते हुए बोली, आज तुम जो ये अमीर होने का ड्रामा कर रही हो, मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक तुम्हारा ये झूठ छिपा रहता है। आकांक्षा ने मक्कारी भरी मुस्कान के साथ कहा और नजाकत से अपने बालों को झटका और फिर सिद्धार्थ का हाथ जाकर थाम लिया। सिद्धार्थ ने एक बार फिर हैरानी भरी नजरों से झलक को देखा, लेकिन बदले में उसे सिर्फ एक छोटी सी कुटिल मुस्कान ही दिखाई दी। अगले ही पल उसने भी आकांक्षा का हाथ कसकर थाम लिया और रणविजय को लेकर वहां से बाहर निकल गया। वहीं आदित्य बड़े प्यार भरी नजरों से झलक को देख रहा था। फिर वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, आप काफी ज्यादा स्मार्ट हैं झलक जी। ये सुनते ही झलक जल्दी से बोली, प्लीज मुझे झलक जी मत कहिए, सिर्फ झलक कहकर बुलाइए। तभी झलक ने गहरी नजरों से अनामिका को देखा, उसका हाथ थामते हुए प्यार से पूछा, तुम ठीक तो हो अनामिका? अनामिका ने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। वहीं तब तक अभय, जो कबीर को वॉशरूम में संभाल रहा था, उसे लेकर बाहर आ गया और यूं सबको खामोश देखकर बोला, ये सब क्या हो रहा है? आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे क्यों खड़े हैं? तभी अनामिका ने रूठे हुए अंदाज में कहा, किसी ने मेरा मूड पूरी तरह से खराब कर दिया है और मेरा इरादा डांस करने का बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैं अब घर जा रही हूँ। ये सुनकर कबीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कि शायद अनामिका उसकी वजह से वापस घर जाने की बात कर रही है। ये सोचकर उसे अंदर ही अंदर काफी बुरा लगने लगा कि उसकी वजह से अनामिका का सारा एंजॉयमेंट खराब हो गया। वो खुद को कोसने लगा, जिस तरह से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसे लगातार उल्टियां हो रही थी, उसी वजह से अभय उसे संभालने के लिए वहां आ गया था, जबकि उससे पहले अनामिका आराम से डांस कर रही थी। अब उसे लगने लगा कि शायद इसी वजह से अनामिका का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था, लेकिन अनामिका ने उसे एक भी शब्द नहीं कहा था। उसी वक्त आदित्य ने झलक की ओर देखा और कहा, अगर आप चाहें तो आप थोड़ी देर और एंजॉय कर सकती हैं। लेकिन झलक ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा,
आप जानते हैं अनामिका को, उसी के कहने पर तो हम यहाँ आए थे और अब उसका ही मन नहीं है, तो चलिए ना वापस चलते हैं, कल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आखिरकार सिद्धार्थ खुराना और आकांक्षा ओबेरॉय की हल्दी का फंक्शन है, तो उसके लिए हमें शॉपिंग वगैरह भी तो करनी होगी ना। वैसे भी दो दिन बाद आकांक्षा ओबेरॉय और सिद्धार्थ खुराना ने हमें अपनी शादी में इन्वाइट किया है, तो उसकी भी तो प्रेपरेशन करनी होगी ना। चलिए अब चलते हैं। झलक की बात सुनकर आदित्य बस मुस्कुराकर रह गया था। वहीं अभय के कानों में झलक की कही हुई बातें गूंजने लगी थीं कि आकांक्षा ओबेरॉय और सिद्धार्थ खुराना की शादी होने वाली है।